الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر ومن عمل كراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں اس حدیث کا ترجمہ پہلے ہم کر لیتے ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں اس کو بیان کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی درویش صحابی تھے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کوئی بات نقل فرمائے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, تو وہ حدیث قدسی ہے. اب کیا حدیث قدسی میں کیا بیان کیا؟ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کو فلہو عشر امثالہا, اس نیک عمل پر 10 گنا ثواب زیادہ دے دیتا ہوں. ایک نیکی پر 10 نیکی مل جاتی ہے. جیسے کسی نے 1 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اگر کسی نے 10 پاؤنڈ دیا اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 پاؤنڈ کا ثواب دیتا ہے, یعنی 10 گنا زیادہ نیکی ملتی ہے. اور جو شخص برائی اور گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہی ہوگی, 10 گنا نہیں ہوگی جتنا اس نے غلط کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا کو ڈبل نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا کو ڈبل نہیں کرتا بلکہ گناہ کے برابر ہی سزا دے. او اغفرا, ومن عمل سیئتا فجزاء مثلها او اغفرا, یا اللہ چاہے تو معاف کر دے. یہ حدیث ہے, تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو اس کا ثواب 10 گنا زیادہ تیار ہے. اب یہ وعدہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہے ثواب کا, یہ اللہ کی طرف سے خود وعدہ, اس لیے اس کو میں نے کیا کہا حدیث قدسی ہے, اللہ نے خود کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی یہ نیکی کرو تو 10 ملے گا, باقی نیکی پر 1-1 ملے گا. کوئی بھی نیکی کا کام کرو, کوئی بھی نیکی کا کام, چاہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا بندے کے ساتھ ہو. حقوق اللہ کا کوئی نیک کام کیا یا حقوق العباد کا, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. کسی بھی قسم کی, چاہے وہ فرض ہو, ظہر کی نماز پڑھ لی آپ نے تو 10 فرض کا ثواب, पांच नमाज सुबह में से लेकर शाम तक पढ़ ली तो 50 का सवाब, चाहे उसका ताल्लुक नफल के साथ हो, सुन्नत के साथ, वाजिब के साथ। ये इस उम्मत पर इतना रहम फरमाया कि कोई भी नेकी का अमल कर लो, चाहे उसका ताल्लुक किसी बंदे की जाकर खबर पुरसी कर ली बीमार है उसके साथ, या किसी को रास्ते में तकलीफ देने वाली कोई चीज पड़ी हुई थी उसको हटा लिया, साइड में डाल दिया ताकि किसी को इसमें तकलीफ ना हो। कोई भी नेकी का काम है, अल्लाह कह रहे हैं 10 गुना सवाब तुम्हें मिलना ही मिलना है। अल्लाह ताला कितना रहीम करीम है कि इसको किसी खास नेकी के साथ मुतय्यन नहीं किया है। जैसे रमजान के रोजे हैं भाई, रमजान ही में रखने हैं और दिन में नहीं चलेंगे। जैसे कुर्बानी है भाई, उसको कुर्बानी के दिन ही में करनी है और दिनों में नहीं है। लेकिन यहां नेकी का काम है, चाहे जब हो, सुबह में हो, शाम में हो, दोपहर में हो, चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, जो भी हो, और जो भी नेकी का काम हो, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक बंदों के साथ हो, चाहे वो एक मरतबा सुबहान अल्लाह ही कह दे, उसको 10 बार सुबहान अल्लाह का सवाब मिल जाएगा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, उसका 10 बार सवाब लिखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक रहीम है कि इस उम्मत के लिए नेकी का कोई भी काम करे उसको 10 गुना सवाब मिलना है। हाँ, अगर उसके बाद उसका इखलास ज्यादा है, बहुत ही उम्दा काम है, इखलास भी बहुत है उसमें, तो फिर अल्लाह ताला 700 तक पहुंचा देते हैं सबा में, 700 तक। और भी ज्यादा है तो अल्लाह कुरान में कहते हैं अजरहुम बिगैर हिसाब, इतना सवाब के जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये अल्लाह कर रहा। जैसे अभी रमजान के बाद आपने 6 रोजे रखे शव्वाल के, 6 रोजे 60 दिन का सवाब है। रमजान के 30 रखे ना, वही बात हमेशा याद रखो, तिर्मिजी शरीफ में और बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, बुखारी शरीफ किताब सोम में भी है, शहराई लायन कुसाने रमजान व जिलहिज्जा, 2 महीने ऐसे हैं कि जो कभी कम नहीं होते, एक रमजान का और एक हज का महीना। इसका क्या मतलब है? तो बाज़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर चे रमजान का महीना 29 का हो, लेकिन सवाब तुमको 30 दिन का मिलेगा। यह मतलब जिलहिज्जा में भी यही, चांद की तारीख आगे पीछे हो, तो ईद के दोनों महीने कम नहीं होते, अगर 29 हो तब भी 30 ही शुमार होंगे और सवाब 30 का मिलेगा। और ऊपर से 6 रोजे आपने शव्वाल के रख दिए तो 30 रोजे का सवाब 300 दिन का हो गया। 10 रोजे का सवाब कितने 100 दिन का हुआ, चूंकि एक रोजे का सवाब 10 दिन के बराबर है, तो 30 रोजे का सवाब 300 दिन का हो गया। और शव्वाल के 6 रोजे रखे तो 60 डेज का सवाब है, और पूरा साल 360 दिन का होता है, 307 दिन का एक साल होता है। फरमाया तुम रमजान के 30 रोजे और ऊपर से 6 रोजे रख लो तो पूरे साल रोजे का सवाब है। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर नेकी का यही हाल है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई गुनाह का काम करता है तो उसको एक ही सजा, 10 नहीं। ऐसा नहीं उसने एक किया 10 दंडे मांग, एक गुनाह है तो एक ही सजा है। जितनी उसने बुराई की, अल्लाह भी अजीब है, अवगफर हो, या तो मैं उसको माफ करूं, मेरी मर्जी है, होता है। इसलिए अगर बंदे ने तोबा कर ली, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कर लिया, अल्लाह के हुजूर में जरा नदामत करने लगा, ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसको माफ भी कर दिया अगर जो गुनाह हो गया। इसीलिए हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस सुनी, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते रखे हैं, किरामन और कातिबीन। किरामन का काम है नेकियां लिखने का और कातिबीन का काम है गुनाह लिखने का। एक नेकी लिखता है, एक गुनाह लिखता है। हजरत मौलाना फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उन दोनों फरिश्तों में ये इंतजाम फरमाया है, ये सिस्टम बनाई है कि नेकी लिखने वाले फरिश्ते को अमीर बनाया है गुनाह लिखने वाले फरिश्ते पर, और अमीर जो कहे वही नहीं बाद वाला करता है। इसको अमीर बना दिया किरामन को, कातिबीन का, और अल्लाह ताला की सुन्नत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है जब दो आदमी किसी काम के लिए जाएं तो अपने में से एक को क्या बना ले, अमीर बना ले। इसलिए एक फरिश्ते को दूसरे का अमीर बना दिया। और जब इंसान कोई नेकी करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता उस नेकी को इमीडिएटली फौरन नाम आमाल में लिख देता है। He writes straight away in the book of register, straight away. लेकिन जब बंदा गुनाह करता है, whenever the person commit a sin, गुनाह करता है, तो बुराई लिखने वाला फरिश्ता फौरन उस गुनाह को नहीं लिखता है। Have to wait. उसको wait करना पड़ेगा। बल्कि वो अपने अमीर से, यानी नेकी लिखने वाले फरिश्ते से पूछता है, अमीर साहब किससे पूछता है, किरामन से पूछता है कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है उसको मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, आई मस्ट राइट और नॉट, ये गुनाह किया है। वो किरामन कहता है कातिबीन से ठहर जाओ, जस्ट वेट, जल्दी नहीं करनी है, डोंट रश टू राइट। हो सकता है ये बंदा जल्दी तोबा कर ले, परहैप्स ही कैन मेक तोबा, ही कैन रिपेंट टुवर्ड्स अल्लाह तबारक व तआला, कर ले या इस्तिग़फार कर ले। अगर उसने इस्तिग़फार कर लिया, तोबा कर ली, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है, यानी कुछ घंटे के बाद फिर पूछता है लिखूं, फरिश्ता कहता है जरा ठहर जाओ, स्टिल वेट, अभी ठहरो, शायद ये तोबा कर ले। देखा, अमीर साहब का हुक्म है। फिर जब तीसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है कि बंदा भी दिन पूरा हो रहा है तोबा नहीं करता, तो उस वक्त नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि अब उसकी तोबा की उम्मीद पूरा दिन चला गया, हो सकता है तोबा कर लेता लेकिन की नहीं कोई नमाज के बाद या कुछ भी, अब लिख लो। तो अब वो बुराई लिखने वाला फरिश्ता उस गुनाह को उसके नाम आमाल में लिख लेता है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह भी नहीं चाहते कि किसी बंदे को अजाब दे, अल्लाह भी तो नहीं चाहता है, वरना फरिश्ते फौरन लिख लेते। अगर कोई आदमी गुनाह करे तो उसकी सजा फौरन मिलनी चाहिए, दुनिया का कानून है, मदरसे का कानून है, फौरन उसको निकाल दो, स्कूल का कानून है, दुनिया का कानून है, लेकिन अल्लाह के यहां कानून नहीं है। फरमाया नेकी करने वाला है फौरन लिख दो, लेकिन बुराई करने वाला है इंतजार करो, एक बार, दो बार, तीन बार तौबा कर ले, माफ, लिखने की जरूरत नहीं है। वो इंसान है, गुनाह हो जाता है, अगर ये तौबा करता रहा तो उसका तो बुराई का जो नाम है अमाल वो तो खाली है। अल्लाह भी अजीब अंदाज से कुरान में बयान फरमाता है सूरह निसा में, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह को क्या मिलेगा अजाब देने से, अल्लाह को अजाब देने से क्या मिलेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और ईमान ले आओ। तो अल्लाह ताला तो अजाब देना नहीं चाहते, लेकिन कोई बंदा नाफरमानी पर कमर ही बांध ले, उसको तौबा ही की तौफीक नहीं होती, अल्लाह की नाफरमानी और नाराज करने पर लग जाए, तो फिर उसके बाद तो उसको अजाब मिलता है। इसी तरह मौत से पहले या रमजान में या बड़ी रातों में या तहज्जुद में या अरफात में या मुजदलिफा में, जब कभी भी, या ईद की रातों में, या फिर अभी जो महीना आ रहा है जिलहिज्जा की पहली 10 रातें, उसको मिस नहीं करना है। दीन में रोजा रखना एक साल के एक रोजे का सवाब एक साल के बराबर, और रात में तहज्जुद पढ़ना लैलतुल कदर के बराबर। फर्स्ट 10 डेज जिलहिज्जा मैं तो भी नहीं हूंगा, नेक्स्ट वीक से तो मैं हज में चला जाऊंगा, तो नेक्स्ट वेडनेसडे तो मैं नहीं हूंगा, लेकिन ये बात याद रखना। अभी आज तो करीबन 16 जिलकादा तो हो चुका है, 15 दिन बाकी है जिलहिज्जा के। ये पहले जो 10 दिन है, 9 दिन है, 10वां तो ईद का दिन है, वैसे भी आप नहीं रखेंगे, खाने का शौक होता है। 9 दिन है, उसमें 9वां दिन अरफात का है, अरफा का दिन है, तो उसमें एक रोजा अरफा का तो 2 साल के बराबर है, और उसमें हर रात लैलतुल कदर के बराबर है। हर दिन रोजा रखे अगर कोई तो एक रोजे का सवाब एक साल के रोजे के बराबर है। सही हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में लिखी हुई है, बुखारी शरीफ। और अल्लाह ताला इन 10 दिनों की इबादत को इतना पसंद करता है कि पूरे साल में दिनों की इबादत को इतना पसंद नहीं करता, यानी उसका सवाब बहुत ज्यादा है। रातों में रमजान की लास्ट 10 रात है, और दिनों में इबादत के एतबार से जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है। दिन के एतबार से इबादत में सबसे अफजल जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है, और रात के एतबार से लैलतुल कदर यानी आखिरी 10 रातें हैं रमजान की। लेकिन फिर भी इन रातों में तुम लैलतुल कदर को तलाश करना चाहते हो, यानी लैलतुल कदर का सवाब चाहते हो, लैलतुल कदर तो रमजान में होती है लेकिन उसके बराबर सवाब चाहते हो, तो इन 10 रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ ले। आप कहेंगे यार 11 बजे तो ईशा है, सोते सोते 12 बज जाते हैं, और बीवी अगर और शौहर के बात नहीं करती सो जाती, पूरा दिन भी ऐसे 2-4-5 बात कर लिया आपने, वैसे 12:30 बज गए। अब उठना 4 बजे तो फजर है, अभी करीब करीब ही है 4 बजे तो फजर की, तो अब क्या 3 घंटे सोने में कैसे उठेंगे तहज्जुद में। उसका आसान रास्ता जो मैं, जिस पर मैं भी अमल करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सालों से, कि विंटर में तुम रात में उठ जाते हैं, बहुत लंबी रात है, समर में क्या है, ईशा की नमाज पढ़ ली, ईशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद तहज्जुद की नीयत से आप 8 रकात पढ़ लो, 6 रकात पढ़ लो, 6 रकात और 3 वितर हो जाएगी, तो 6, 7, 8 और 9। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात पढ़ी है यानी 6 और 3, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात पढ़ी है 8 तहज्जुद की और 3 वितर की, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 और 3 13 रकात पढ़ी है, 10 और 3, जैसे रमजान में तरावी की जगह वो पढ़ते हैं 13 रकात, यानी 10 रकात तरावी की पढ़ते हैं, 3 रकात वितर पढ़ते हैं, तो 10 रकात और ऊपर से 3 वितर है। और अगर नहीं बहुत थके हुए हैं तो 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो तो 7 रकात हो जाएगी, इसका भी जिक्र है हदीस में। अरे बहुत थका हुआ है तो 2 रकात ही तहज्जुद की नियत से पढ़ ले और 3 हुआ तो 5 रकात हो जाएगी, हदीसों में ये सारे जिक्र मौजूद है। लेकिन जितना ज्यादा शुगर डालेगा इतना मीठा ज्यादा होगा, समझ में आई बात। तो इन रातों में कौन है जो आदमी नहीं कर सकता आसानी से, फिर वितर पढ़ के सो जाए, फिर फजर की नमाज के लिए उठ जाए, ये भी आसान है। आप कहें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, इसीलिए अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अगर कोई आदमी ईशा के बाद भी तहज्जुद पढ़ ले तो कयामत में उनको उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जो रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते थे, जो रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। ये तो बात से बात याद आ गई मुझे, ये बहुत मुबारक दिन चल रहे हैं अभी, बहुत मुबारक शव्वाल, ज़िलकादा और ज़िलहिज्जा। ये ज़िलहिज्जा जिसका जिक्र कुरान में है कि 4 महीने अल्लाह पाक ने हराम किए, उसमें लड़ाई झगड़े अरब के जाहिलियत के जमाने में भी नहीं लड़ते थे, मुहर्रम, रजब, ज़िलकादा और ज़िलहिज्जा। ये ज़िलकादा चल रहा है, इसमें तो गुनाह करना और बुरा है, और ज़िलहिज्जा में तो हज का महीना है, फिर उसमें आप कुर्बानी करेंगे, जिनके ऊपर कुर्बानी जरूरी है वो कुर्बानी जरूर करें, ऐसा नहीं है
कि मेरे हस्बैंड ने एक बकरा काट लिया तो सब पूरे घर की कुर्बानी हो गई। नहीं, अगर बीवी के पास इतने पैसे हो जैसे ज़कात वाजिब हो जाती है, किसी किसके पास नहीं होते 500 600 700 पाउंड आज के हिसाब से, 52.5 तोला चांदी, गोल की बात नहीं कर रहा, गोल तो माशाल्लाह बहुत सस्ता है अभी, मैं चांदी की बात कर रहा हूं, चांदी की बात कर रहा हूं, 52.5 तोला चांदी का भाव पूछ लो, मुश्किल से 400-500 पाउंड होंगे गालिबन मेरे अंदाजे से, तो किसके पास नहीं होते हैं। अगर बच्चे बच्चियां नौजवान हो चुकी है, ओवर 15 है और उनके खुद के अकाउंट में है 52.5 तोला चांदी के पैसे, इतने हो या ज़कात के बराबर हो, उसके पास मौजूद हो, तो उस पर भी उसकी अलग कुर्बानी वाजिब है। छोटे बच्चों पर कुर्बानी नहीं है, नाबालिग पर तो नहीं है, मेरी बात सुन रहे, नाबालिग पर सदकतुल फितर है जो रमजान के बाद है, लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो जो बालिग हो और जिनके पास इतने पैसे हो तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। रसूल पाक साहब ने फरमाया जो कुर्बानी न करे वो मेरी ईदगाह में ईद की नमाज के लिए भी ना आवे, बहुत सख्त वईद है। इसलिए बात से बात आगे निकल गई, चलो ये भी क्या मालूम ये मौजू के बयान करे न करे, इसीलिए कोशिश करो अच्छी कुर्बानी करो, छोटी मोटी नहीं है, मरियल चट्टू जैसी कि एक पुश करो कि वो गाय भी मर जाए, वो पाड़ा भी मर जाए, वो बकरी भी मर जाए, सस्ती है ना 20 पाउंड की, क्या करते हैं आज 120 की कुर्बानी है तो 20-20 दे दो खत्म। अरे भाई 20 पाउंड में तुम कयामत में चाहते हो कि पुल सिराट पर अपने जानवर पर बैठकर जा सकते हो, 20 पाउंड में कोई मुर्गी भी नहीं मिलती है, ये तो एक रास्ता निकल गया आपकी कुर्बानी का हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं समिनु ज़हायाकुम फइन्नहु अला सिराति मतायाकुम, मोटी कुर्बानी करो, अच्छी महंगी कुर्बानी करो ताकि पुल सिराट पर तुम्हारी बेहतरीन सवारी बने। मुर्गी पर बैठ के जाओगे पुल सिराट पर, बात मेरी समझ में आ रही है ना। इसलिए कोशिश करो कि कुछ 20-30-40 पाउंड, ये क्या है कुछ भी नहीं, पैसे तो आने जाने वाले हैं, असल तो हमें अल्लाह के यहां सवाब चाहिए, हमें अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करनी है। कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है, कुर्बानी का मकसद अपने बेटे को ज़बह करना था, लेकिन अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आसानी करके बेटे के ज़बह के ऊपर दुम्बा जन्नत से भेजा। अब कयामत तक वही एक कुर्बानी बाकी रहेगी कि तुम्हें तुम्हारे बेटे को ज़बह करने की, तुम्हारा बेटा है अगर उसको ज़बह करते दुनिया में क्या शोर मच जाता। अल्लाह पाक के यहां फरमाया मैं देखना चाहता हूं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, इब्राहिम और इस्माइल तुम दोनों और इंग्लिश में कहता सबमिट हो गए, तुमने सर झुका दिया मेरे सामने, बेटे को सुला दिया, छुरी हाथ में ले ली ज़बह करने की, लेकिन मेरा ये मकसूद नहीं, बेटे की जगह ये दुम्बा है। तो भाई बेटा कितना कीमती होता है, हम क्यों अपनी कुर्बानी कीमती वाली ना बनाए। तो भाई मेरी तरह से 20 पाउंड एक कुर्बानी हो जाए, समझ में आती है बात। इसलिए कोशिश करो ये 120 140 180 पाउंड 180 पाउंड ये तो अल्लाह वापस देगा, इसलिए अल्लाह ने वादा किया है तुम मेरे रास्ते में दोगे तो अल्लाह को चैन नहीं आएगा जब तक मरने से पहले उसका मल्टीप्लाई तुम्हें ना दे दे। तो फिर हम अच्छी कुर्बानी क्यों ना करें, इतने बखील क्यों बने अल्लाह के लिए, माल भी अल्लाह का, जान भी अल्लाह की, और अल्लाह ही मांग रहा है और उसमें से पूरा भी नहीं थोड़ा मांग रहा है, फिर भी हम देने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए कंजूसी छोड़ो, मक्खी चूस न बनो, अल्लाह के रास्ते में अच्छी कुर्बानी करो। अगर तुम पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है तो कुर्बानी करना जरूरी है, याद रखो, बात समझ में आ रही है ना, ताकि गरीबों को गोश्त अच्छा पहुंचे, वो एक धक्का दे और बकरी मर जाए उसका गोश्त हम खिलाएंगे, और यही गोश्त हम क्यों नहीं खाते फिर, कि जिसके बकरी चल भी नहीं सकती, ये चले तो वैसे ही हवा में उड़ जाए। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है सम मिनु जहा, जहाक मना सम मिनु समन, मोटी कुर्बानी करो ताकि पुल सिराग पर तुम्हें आराम से बिठा कर अल्लाह के यहां ले जाए। अल्लाह उस कुर्बानी को, अब जैसी आदमी की नीयत, जिसकी नीयत में खतरा उसके झोली में पथरा, जिसकी नीयत में खतरा, अगर पैसे ही बचाना है, अल्लाह को राजी करना नहीं है, तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम है सच बात को बताना है, सही बात को बताना है कि अल्लाह तो छोटी से भी राजी हो जाता है, बड़ी से भी राजी हो जाता है, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है, लेकिन काम मेरा है। काम क्या है? मेरा है। इसलिए याद रखो यहां बात से मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो अल्लाह कह रहे हैं इन शकर तुम वामन तुम, अल्लाह को अजाब देने से क्या मिलता है अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। तो शुक्र से मुराद क्या है भाई? अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करो। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है, अल्लाह क्या कहता है? मैं माफ कर दूंगा। अगर तोबा कर ले, मैं माफ कर दूंगा। और आगे क्या कह रहे हैं? मन अमिल कुराबिल अर्दी खतिया, जो शख्स पूरी दुनिया भरकर, अल्लाह खुद कह रहा है पूरी दुनिया भरकर उसने गुनाह किया है। हमारे गुनाह तो इतने नहीं है कि पूरे ब्रेफर भर जाए, पूरा ब्रेफर भी नहीं भरता। लेकिन अगर इतने गुनाह किए कि कुराबल अर्द, समझ में आई बात, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक, ईस्ट टू वेस्ट साउथ टू नॉर्थ, पूरी दुनिया हमारी एक आदमी की गुनाह से भर जाए, सुम्म लकीनी, फिर वो मेरे पास आएगा, लाइव शिरक भी, लेकिन मेरे साथ शिरक नहीं किया उसने, अल्लाह को शिरक भी पसंद नहीं है, शिरक नहीं किया, तो फिर अगर ये तोबा करेगा तो जअल्तु लहु मिसलहा मगफिरत, क्या है? पूरी दुनिया के गुनाह को माफ करके पूरी दुनिया के बराबर उसकी मगफिरत कर दूंगा। इतनी बड़ी मगफिरत हो जाएगी, सारी जमीन भर दे और फिर शर्मिंदगी के साथ तोबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन माफी का दरवाजा हमने खोला रखा है। देखो अल्लाह कितना रहीम करीम है। ऐसा नहीं है कि अगर दीन में तुमने गुनाह किया, शाम तक तोबा नहीं की, गया, अब तुम्हें सजा मिलेगी, नहीं। जिंदगी में भी अगर इंसान को मौका मिले, जैसे मैंने बहुत सी रातें बताई अभी आपके सामने, जब कभी मरते दम तक, हाँ, मरने से पहले पहले, मौत के फरिश्ते नजर आए उससे पहले पहले, सकरात से पहले पहले, ये दरवाजा तोबा का खुला हुआ है, आ जाओ आ जाओ, कितने भी दूर चले गए हो तब भी हमारे पास आ जाओ, एक मर्तबा सच्चे दिल से तोबा कर लो, तोबा कर लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। सिर्फ ये नहीं कि उन गुनाहों पर सजा नहीं मिलेगी, बल्कि नाम आमाल से भी गुना मिटा दिया जाएगा। गुना क्या? मिटा दिया, यानी वो फरिश्ते भी भूल जाएंगे, वो जमीन जहां पर गुना किया, वो रात और दिन जहां कहीं भी गुना किया, सारे गवाह भूल जाएंगे। अल्लाह कुरान में है कि सारे गवाही देंगे कयामत में, बदन भी, सब भूल जाएंगे। अल्लाह इतना मिटा देगा, लेकिन हमारी कोर्ट में अगर जाओ, एक का केस है तो उसकी फाइल तो हमेशा रहती है। चलो ये छूट तो गया जेल से, लेकिन उसकी फाइल जो है हमेशा रहती है। फिर दोबारा हुआ तो उसकी वही पुरानी फाइल खुली जाती है। अब तो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें लगाओ नाम तो गौर तुम्हारी फाइल सामने आ जाती है। अल्लाह कहते हैं ये मेरी जो फाइल है किरामन कातिबीन की, उसमें से भी डिलीट कर दूंगा, और जहां जहां तुम्हारे फुटेज है गुनाहों के, उसको भी मिटा दूंगा। तो कयामत में तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा। बात मेरी समझ आ रही है ना? ये अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत को देखिए। इसलिए हदीस में है सबकत रहमती गजबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गया भाई गालिब आ गई। मुस्लिम शरीफ की हदीस है अल्लाह की रहमत। इसीलिए जन्नत के कितने दरवाजे? 8 है, और जहन्नम के 7 है। जहन्नम कितने दरवाजे? 7 है, और जन्नत के कितने हैं? 8 है। तो क्या कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कि मेरी रहमत गजब पर गालिब है। मेरी रहमत क्या है? जन्नत भी जहन्नम पर भी गालिब है, अल्लाह की रहमत। ये कानून इसलिए बनाया, क्यों बनाया? आदमी तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इसीलिए हदीस में आता है मक्का वालों ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितने पहाड़ मक्का के हैं सबको सोना बना दो तो हम तुम्हें रसूल मानेंगे, हम तुम्हें नबी मानेंगे। कैसा सवाल है? कुरान में तो बहुत कुछ उन्होंने पूछा है, मांगा है, आसमान पर चढ़ जाओ हम देखें, फिर हमारे सामने किताब लेकर आओ, 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में सब कुछ है। लेकिन यहां क्या कहा? सोना बना दो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, नबी मैं अभी आपको इन पहाड़ों को ऐसा सोना बना दूंगा कि वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे इस मौजीजे को देखकर मक्का वाले ईमान नहीं लाए तो उनको साले अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊंटनी मांगी थी कि पहाड़ से निकालो और निकालने के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो, फौरन अंदर में प्रेग्नेंट हो, पहाड़ के अंदर बाहर निकले फौरन बच्चा दे। देखा तो साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दो रक्का पढ़कर दुआ की, आई ऊंटनी, पहाड़ फटा और ऊंटनी वो बड़ी साइज की निकली और वो भी प्रेग्नेंट है, बाहर आकर उसने बच्चा दिया। फरमाया अगर तुम्हारी कौम मक्का वाले इस मौजिजे को देखने के बाद अगर वो ईमान नहीं लाए तो मैं इनको ऐसी सजा दूंगा, एक साथ खत्म करूंगा जैसे कौम साले को मैंने खत्म कर दिया है, और अगर ये नहीं चाहते हो कि आपकी उम्मत आपकी उम्मत खत्म हो जाए तो आपको मैंने दूसरा एक रास्ता बता देता हूं, वो पसंद कर लो कि मैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल देता हूं कयामत तक के लिए, कि जब कभी भी ये तौबा कर लेंगे गुनाह करने के बाद जिंदगी में एक बार दो बार मैं सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा को कबूल कर लिया कि ये पार नहीं चाहिए मुझे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, इसलिए ये दरवाजे खुले हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हदीस, इन्नी लास्तगफिरुल्लाह कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, मैं नबी रोजाना 70 मर्तबा इस्तिगफार करता हूं, इन्नी लास्तगफिरुल्लाह कुल्ल यौमिन 70 मर्रा। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे तौबा का और इस्तिगफार का, और नबी के जरिए हमें सिखा भी रहे हैं कि नबी खुद तौबा कर रहे हैं, इस्तिगफार कर रहे हैं कि मैं खुद करता हूं सुबह और शाम, कुल्ल यौमिन, तुम क्यों नहीं करते? तो हदीस कुदसी का एक जुमला आगे क्या है, मन इक्तरब इलैय शिबरन इक्तरबतु इलैहि ज़राअ व मन इक्तरब इलैय ज़राअन इक्तरबतु इलैहि बाअ व मन अतानी यमशी अतैतु हरवला। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जो बंदा मेरे करीब एक बालिश्त, वन बालिश्त है ना, सुनना बात, इतना अगर मेरी तरफ आ गया तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आ जाऊंगा, और जो मेरी तरफ एक हाथ आ गया मैं उसकी तरफ दो हाथ आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, मन एक तरफ इले जरान एक तरफ तो इले बा, ये बा है दो हाथ, मैं इतना उसके करीब आऊंगा। वमन अतानी यमशी, अगर वो मेरी तरफ यानी अल्लाह के हुक्मों की तरफ चलकर आएगा तो अतई तू हर वला, मैं उस की तरफ दौड़ कर जाऊंगा। अल्लाह का दौड़ना कैसा है हमें, यानी अल्लाह अपनी रहमत में उसको ले लेंगे, इसलिए उसकी मिसाल में दिया करता हूं। छोटा बच्चा होता है ना, वो अभी चलना सीख रहा है, एक कदम दो कदम अभी चल रहा है, तो बाप और मां क्या कहती, बेटे खड़े हो जाओ, कम हम चलो, हालांकि वो चल नहीं सकता, एक कदम फिर गिर जाएगा, लेकिन उसको कह रहे चल, वो उसकी ताकत के मुताबिक एक दो कदम चलता, गिरेगा तो जल्दी से बाप उसको क्या है, पकड़ लेता है। इसी तरह बंदा है वो चल नहीं सकता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ आएगा, अल्लाह उसको अपनी गोद में ले लेंगे, उसको माफ कर देंगे। इसलिए अल्लाह की रहमत का अंदाजा तो लगाओ, कोई आदमी करीब आने की कोशिश तो करे। हकीमुल उम्मत हजरत मौना अशरफ अली साहब ने यही मिसाल दी छोटे बच्चे की, छोटा बच्चा जिसको चलना नहीं आता तो बाप उसकी किस तरीके से अपनी गोद में बिठा लेता है। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है और गिरने लगता है फिर फिसल जाता है, और ड्रग्स वाले छोड़ देते फिर जरा फिसलने लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उसको फिसलने से बचा लेते हैं क्योंकि उसने तौबा कर ली। तो अल्लाह की तरफ से एक बहाना है माफ करने का, एक बार, वरना अल्लाह को मेरी और आपको क्या जरूरत है। वाकया आपको सुनाया था, एक गरीब आदमी देहात का कहत साली में बीवी से बुड्ढी से कह रहा है यार बहुत कहत साली है, ड्राउट है, कुछ करो यार, बादशाह के लिए कुछ हम हदिया लेकर जाए। तो बीवी भी बीवी थी उसने, बाज मतलब बीवी की बात भी अच्छी होती है, कहा कि पानी ले जाओ, इसलिए कि ड्राउट में पानी नहीं होता है ना, तो ऐसे मटका भर के पानी ले जाओ बादशाह के पास, मटका भर का पानी ले जाओ। कहा बहुत अच्छा, ये तो ड्राउट है ना, कैसाली है। तो उसने मटका भरा और चलना शुरू किया, कई दिन का सफर, रास्ते में हवा फुला फुला, तो वो पानी जब वहां पहुंचा ना तो ऊपर वो राख से क्या है जम गया था, और पानी बिल्कुल रोटन और गंदा हो गया था, उसमें से बदबू आती थी, जमजम तो उठा ले जिसमें से बदबू ना आए, ये तो दुनिया का पानी, उसमें क्या है वो राख गिर गिर कर वो बदबू आने लगी। जब बादशाह के सामने क्या लेकर आए भाई, कहा आपके लिए गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट लेकर, मटका भरकर, का पानी नहीं है, ड्राउट है ना, पानी लाया, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चला खोला तो पूरा बादशाह का रूम बदबू से भर गया, वो गंदे जो बदबू निकलती है ना गंदे पानी से, आप देखना कभी तालाब जहां थोड़ा पानी हो गंदा हो जाए कैसी बदबू आती है, हो पूरा रूम। लेकिन बादशाह ने मुंह नहीं बिगाड़ा, ये क्या लेकर आया, निकलो यहां से, नहीं, अपने वजीर को कहा इसके मटके से पानी ले लो, दूसरे मटके में डाल दो, और इसको मटका भरकर सोना दे दो, दिरहम दे दो, सिक्के दे दो। ठीक है, अब भर दिया सब कुछ उसको सोने से गोल से, मौलाना रूम इसलिए लिखते हैं मसनवी में, हमें आप जरा जावे ना तो उसको जरा अलविदा कर दो, लेकिन दरिया दजला के पास से गुजार देना उसको, कहां से दरिया दजला के पास से, उसको पता चले हमारे पास तो पानी बहुत है, पूरे इजिप्ट में यही पानी लोग पीते हैं इसी दरिये का, वहां बारिश नहीं होती इतनी ज्यादा, साल में कभी एक दिन हुई तो हुई, यही पूरे इजिप्ट में यही पानी जाता है, समझ लो यो दरिया है, जब से उस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लेटर उसमें डाला था पूरा लंबा बाकी है, तब से पानी आज तक खत्म नहीं हुआ, वो पानी ही पानी उसमें, हमने देखा था माशाल्लाह, कभी इजिप्ट जाना हो तो आप देखना, बहुत सारी चीज देखने की वहां। तो ये जो है देख दिखा दिया उसको, हाँ यार पानी तो बहुत है तुम्हारे पास, देख उसको भी रियलाइज तो हो गया, चला गया। अब यही मिसाल दी मौलाना रूम ने कि तुम्हारे अमल जो है ना, ये तुम्हारे ढंडे जो है ना सब, ये गंदे पानी की तरह है, या किसकी तरह, तुम्हारी तौबा भी ऐसी ही है, तुम्हारा इस्तिगफार भी ऐसा है, तुम्हारे सजदे भी ऐसे है, तुम्हारी नमाज भी वसवसों से भरी पड़ी है, तुम्हारे रोजे भी है गिबतों से भरे हुए है, और जकात भी रियाकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारे हज उमड़े भी रियाकारी से भरे पड़े है, कुछ नहीं उसमें, वो गंदे पानी की तरह है, लेकिन अल्लाह कहते कुछ नहीं, आम आलो है फरिश्ते से कहते हैं तुम्हारी इबादत से बेहतर ये इबादत है, वो फरिश्तों की इबादत तो कितनी आला है, लेकिन अल्लाह कहते तुम्हारी इबादत, इसको ले लो निकालो और उसको सवाब से भर दो, लेकिन इनको बता देना कि से पहले आसमान से लेकर सात आसमान तक दर्रे दजला की तरह फरिश्ते सजदे में रुकू में और रुकू में क़याम में लगे हुए हैं, तस्बीहात में लगे हुए हैं, अल्लाह को जरूरत नहीं तुम्हारी, लेकिन अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी इस बात को कबूल कर लेता है, माफ कर जाओ। कैसी मिसाल दे मौलाना रूम रहमतुल्लाह। इसलिए ये जो आजकल है अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कौन सा बंदा मेरी तरफ बढ़ता है और मेरी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई बंदा कोशिश ही ना करे तो उसके लिए तो कोई वादा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है कि कोई भी किसी को समझता है जन्नत में पहुंच जाएंगे जन्नत में पहुंच जाएंगे, इंसान ही खुद जन्नत में जाना ना चाहे तो फिर कसूर हमारा है, जन्नत में जाने वाले अमल भी तो करने पड़ेंगे। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उसका हाथ पकड़ कर अल्लाह उसको सीधे रास्ते पर लगा देंगे, कोशिश करना। अब ये क्या है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी दुनिया में मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में पहुंचा देता है। असल क्या है, कोशिश है, तलब है, हर चीज में तलब है। हदीस शरीफ में बहुत सारे वाकियात हैं, कई वाकियात ऐसे आए हैं जिससे जाहिर होता है कि मौजजे के तौर पर आपकी बरकत से खाने में पानी में गज़वे अहबाब में देखो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के यहां कितना कितनी बरकत के कई कई सहाबे किराम ने एक बकरी और एक जौ की रोटी से खाना खा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हैं। खाने में बरकत, पानी में बरकत, फुला पानी उंगलियों से निकलना, सब कुछ खाने में भी देखो। और इसी तरीके से जमजम में पानी आपने पीकर, इसी तरह मूसा अलैहि सलाम यद बेजा का मौजिजा, तो आप देखेंगे कि हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम किसी लंबी और सीधी सड़क पर खड़े हो ऐसे, और उस सड़क के दोनों किनारे पर दरख्तों की ऐसी दरख्त लगे हुए, जैसे आप बहुत सारी जगह जाओ तो आपको क्या हाईवे पर देखना दरख्त उगाए गए हैं, यहां नहीं बहुत सारे जंगलों में रोड जाता है दोनों तरफ क्या है। अब अगर यहां खड़े खड़े सड़क को देखोगे तो यह नजर आएगा आगे चलकर वो क्या है मिल गए हैं दरख्त। आप जितना आगे जाओगे, जितना आज आगे जाओगे तो क्या होगा, वो रास्ता खुला हुआ होगा। अगर कोई आदमी ये समझे नहीं यार आगे मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाता तो ऐसे मिल गया है अब ब्लॉक है, तो ये बेवकूफ है। इंसान करता चला जाए, करता चला जाए, करता चला जाए, मरते दम तक सोते बैठते उठते जागते इंशाअल्लाह रास्ता खुलता चला जाएगा। इतना खुलेगा कि अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब तेरे लिए पुरसिराब का रास्ता भी खुला है और जन्नत में जाने का रास्ता भी खुला है, सीधा अंदर में चला जा। इंसान कोशिश करें गुनाहों के छोड़ने की, नेकियों की तरफ आने की, कदम बढ़ाओ फिर दुआ भी करो, अल्लाह मैंने कदम तो बढ़ा दिए, दुआ भी करते चले जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं, तुम चल कर आओगे मैं दौड़ कर आऊंगा, तुम्हें पकड़ लूंगा, अपनी रहमत के आगोश में बिठा लूंगा। अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाले अय्याम बहुत कीमती है, उसमें हम अपने दीन को कीमती बनाए आमाल के जरिए से, आमाल सालिहा के जरिए से, और गुनाहों से अपने आप को बचाएं, जिसके बारे में कुरान में अरबातुल हुरुम 4 महीने में गुनाह करना और ज्यादा सीरियस है, एक मुहर्रम में, एक रजब में, एक ज़िलकादा में और ज़िलहिज्जा में। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अभी नेक्स्ट वीक से प्रोग्राम नहीं होगा जब तक मैं आना जाऊं इंशाल्लाह हज से बात, फिर मैं इंशाल्लाह इकबाल भाई उनकी घरवाली जो है सिस्टर जो है वो आपको मैसेज देगी, तब आप इंशाल्लाह यहाँ प्रोग्राम में पहुंचेंगे। गालिबन 12 जून को मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, 12 जून के बाद जो वेनेसडे आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अरहमुर रहीमीन, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, يا ديان يا سلطان يا قديم الاحسان، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ چھپ کر کھل کر، اے اللہ زبان سے، ہاتھ سے، آنکھوں سے، دماغوں سے، دلوں سے بڑے گناہ کی اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، اور ہماری نسلوں کی تا قیامت اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، بگڑنے سے، فسلنے سے بچا لینا، اللہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہمیں قائم دائم رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، قریب کے دور کے، اے اللہ دوست احباب کی، متعلقین کی، محسنین کی، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین پر قائم رکھنے کی، قائم رکھنا ہے اللہ، استقامت علی الدین نصیب فرمانا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں، جانے والے ہیں، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، سب کے حج کو حج مقبول بنا، حج مبرور بنا، سب کا جانا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما، پوری امت کی اے اللہ جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدرسوں کی، مکتبوں کی، مسجدوں کی، ایمان والوں کی، نیک اور صالحین کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے، اے اللہ اعمال صالحہ کی تو حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری ہمیں بچا لینا، گناہوں سے ہمیں بچا لے، अल्लाह जो गुनाहों पर चल रहे हैं उन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम पक्की तौबा करते हैं, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, जो कुछ किया उस पर नदामत के आंसू बहाते हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह इन आने वाले दिनों को हमारे लिए कीमती बना दे, मगफिरत का जरिया बना दे, रहमत का जरिया बना दे। अल्लाह अपने फजल व करम से, रहम व करम से हमारी दुआओं को अल्लाह तो आमीन कहने वाले और आमीन कहने वाली के आमीन के साथ हमारी आमीन को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबी।